शाम का वक्त था। मुंबई के पनवेल एरिया में एक बड़ा सा विला था, जहां एक लड़का अपने कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। चेहरे पर सख्त भाव थे। वो अपने शूज पहनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और गेट की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, बेटा कहाँ जा रहे हो इस वक्त? आवाज़ सुनकर लड़के की मुठ्ठियाँ कस गईं। उसने पलटते हुए गुस्से से चिल्लाया, कितनी बार कहा है आपको मुझे पीछे से टोका मत कीजिए, पर आप अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं। और किसे बेटा कह रही हैं आप? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मुझसे ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। नौकर हैं तो वही बनकर रहिए, अपनी औकात मत भूलिए। मॉम डैड ने ही आपको सर चढ़ा रखा है, पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ, तो मुझसे और मेरे मसलों से दूर रहा कीजिए। उसने उनकी इंसल्ट की, वो भी इतनी बेरहमी से कि आंटी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपना सर झुका लिया। लड़का अब भी गुस्से से उन्हें घूर रहा था। अचानक ही एक गुस्से भरी आवाज़ वहां गूंज उठी, विहान ये कौन सा तरीका है आंटी से बात करने का? विहान ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैं तो उन्हें मुंह लगाना ही नहीं चाहता, वही बार बार मेरे काम में दखल देती रहती हैं। कितनी बार कहा है मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहा करें, पर उन्हें समझ ही नहीं आता है। सब आपके और मॉम की गलती है, क्या ज़रूरत है किसी नौकर को इतना सर चढ़ाने की? उसकी बात सुनकर डॉक्टर हर्षवर्धन बजाज, जो उसके डैड हैं, उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, अब भूल रहे हैं कि इन्होंने ही आपको पाला है, आपकी माँ के बराबर दर्जा है उनका अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा तमीज़ से बात किया कीजिए उनसे। कोई एहसान तो नहीं किया उन्होंने मुझ पर, अगर बचपन में मेरा ख्याल रखा भी था तो उसके पैसे लिए ही होंगे, तो वो मुझ पर एहसान नहीं अपना काम कर रही थी। और आप दोनों देते तो हैं उन्हें इतनी इज्जत, देते रहिए, मैंने तो आपको नहीं रोका, बस इन्हें कहिए कि मुझसे दूर रहा करें, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं कि कोई नौकर मेरी ज़िंदगी में दखलअंदाजी करे। अपनी बात कहकर वो वहां से जाने लगा। डॉक्टर बजाज ने फिर कुछ कहना चाहा, पर आंटी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रहने दीजिए भैया, बच्चा है अभी, फिर ठीक ही तो कह रहा है, मैं नौकर ही तो हूँ, आपने मुझे इस घर में जगह दी, इतना प्यार और इज्जत दी, वही बहुत है मेरे लिए, मुझे विहान से कोई शिकायत नहीं। डॉक्टर बजाज ने खामोशी से उनकी बात सुनी, फिर विहान को देखकर सख्त आवाज़ में बोले, ठीक है वो गैर है, पर हम तो आपके पिता हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं। उनकी आवाज़ सुनकर विहान ने पलटते हुए जवाब दिया, अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। हाँ यही तो काम है आपके पास, अपने आवारा दोस्तों के साथ सड़कों पर आवारा गर्दी करते घूमो, ना तुमसे ढंग से पढ़ाई हुई, ना ही कुछ काम करने का ख्याल है तुम्हारा, बस हमारी मेहनत की कमाई को अपनी अय्याशियों में उड़ाने में लगे हैं। हमने सोचा था अच्छी लड़की पसंद की है आपने, शादी हो जाएगी तो शायद आप सुधर जाएं, पर आपने तो शादी के दिन शादी ही तोड़ दी, और वहां जाकर आपने जो हंगामा किया है वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो भला हो उस लड़के का जिसने उस बच्ची का हाथ थाम लिया, वरना आपके वजह से एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, जिसके लिए हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। मासूम नहीं है वो, आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में, उस धोखेबाज लड़की ने मुझे धोखा दिया, शादी मुझसे कर रही थी और सुहागरात अपने यार के साथ मना रही थी वो। विहान ने गुस्से में जैसे ही इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा, जिससे वो दो कदम पीछे हो गया। हथेली अपने गाल पर रखकर उसने सर उठाकर देखा। इसके साथ ही हर्षवर्धन जी गुस्से में चिल्लाए, जुबान संभाल कर बात कीजिए, एक मासूम पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई? ये मत सोचिए कि आप हमारे बेटे हैं, इसलिए हम आपकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे। उनके दामन पर कीचड़ उछालने से पहले खुद को ज़रा गौर से देखिए, रोज़ आप कहाँ और किसके साथ होते हैं कुछ भी छुपा नहीं है हमसे, बस हम खामोश हैं तो आपकी माँ की वजह से, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और उनकी हालत ठीक नहीं, वरना जैसी आपकी हरकतें हैं ऐसी औलाद को हम धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते। आपकी मॉम को आप में कोई कमी नहीं देखती, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरह हमने भी अपनी आंखों पर आपके प्यार की पट्टी बांध ली है, सब जानते हैं हम और सब देख भी रहे हैं हम, आपको आगाह कर रहे हैं बाज आ जाइए अपनी हरकतों से, अगर आप अब नहीं सुधरे तो हमें आपको इस घर से निकालना ही होगा। अगर आप हमारे बेटे बनकर इस घर में रहना चाहते हैं तो आज और अभी से आपका आपके दोस्तों से मिलना जुलना बंद, हमारी मर्जी के बिना आप इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेंगे, और अगर आपने हमारी बात को नहीं माना और बाहर एक कदम भी रखा तो हम आपको अपने घर में वापस घुसने नहीं देंगे, आपको अपने घर और अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे, वैसे भी आप जैसा बेटा रखकर हमें दुखों और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला है, सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, अगर हमने आपके सर से अपना हाथ हटा लिया तो आप सड़क की धूल बराबर भी नहीं रह जाएंगे, ये ऐशो आराम और पैसों जिनके घमंड में चूर होकर आप पैसों को पानी की तरह बहाते हैं ना, वो सब छिन जाएगा आपसे, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे आप, और तब आपका कोई दोस्त आपके काम नहीं आएगा, तो आपकी भलाई इसी में है कि घर में रहिए, अपना सामान पैक करिए और कल सुबह की फ़्लाइट से अपनी मॉम के साथ अमेरिका अपने मामा के पास चले जाइए, उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर को आपकी मॉम की फ़ाइल दिखाई है और उनका दावा है कि 3 महीने के ट्रीटमेंट से आपकी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमें यहाँ हॉस्पिटल संभालना होता है तो हम नहीं जा सकेंगे, तो आपको अपनी मॉम के साथ जाना है, उम्मीद करते हैं जिस माँ ने आपको जन्म दिया उनके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो दरवाज़ा खुला है आप जा सकते हैं, बस दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाइएगा, हम समझेंगे कि हमारा बेटा मर गया।
इतना कहकर वो अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए वहां से चले गए। वो आंटी भी उनके पीछे पीछे चली गईं। विहान का चेहरा गुस्से से दमदमाया हुआ था। उसने मुट्ठियां भींचते हुए खुद से ही कहा, आज फिर बच गई तुम मुझसे, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। जी लो जितने दिन चैन से जी सको। एक बार मैं वापस आया तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगा। वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान आरवी किचन में सबके लिए शाम की चाय बना रही थी, तो उसने कुछ सोचकर शान के लिए कॉफी बना दी। सब बाहर गार्डन में बैठे थे। अभी तक डॉक्टर नहीं आए थे सुभाष जी को देखने। किसी इमरजेंसी केस की वजह से वो कुछ देर बाद आने वाले थे, तो सभी बाहर बैठे थे। अंशु पढ़ रही थी और बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। आरवी ने छाया के हाथ सबके लिए चाय और अंशु के लिए दूध भेजा और खुद कॉफी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ एक घंटे पहले शेखर घर आया था और तभी से शान अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। आरवी रूम में पहुंची तो शान शर्ट पैंट पहनकर तैयार हो रहा था। आरवी कुछ कहने ही वाली थी कि शान के फोन की बीप बज गई और वो फोन चेक करने लगा। मैसेज आया था, वो भी निया के नंबर से। ये देखकर ही उसकी भौहें तन गईं। उसने आंखें छोटी छोटी करके मैसेज को पढ़ना शुरू किया।